Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharvavediya Brahman Bhag ke Prashnopanishad ka vichar hum log kar raha hai. Sukesha Adi छह ऋषि आचार्य पिपलाद जी के आश्रम में ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के गए हैं। आचार्य पिपलाद जी की आज्ञा के अनुसार एक वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा रूपी साधनों को परिपुष्ट करने के लिए निवास करने के बाद कवंधी नाम के ऋषि ने अपर विद्या के फल विषयक प्रथम प्रश्न पूछा कि हे भगवान, यह सारी प्रजा जो अपर विद्या का फल है वह कहां से उत्पन्न होती है? तो बताया अन्न रूप प्रजापति से। जब कबंधी के प्रश्न का उत्तर मिल गया उसके बाद भार्गव वैदर भी ऋषि आचार्य पिपलाद जी से अनुमति लेकर के प्रश्न करते हैं। वो है द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न में उन्होंने अवांतर तीन प्रश्न किए। ये अन्न रूप प्रजापति से निष्पन्न हुई शरीर रूप जो प्रजा है, इस प्रजा को धारण करने वाले देवता कितने हैं? पहला प्रश्न कि भगवान कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते, ये शरीर को धारण करने वाले देव कितने हैं जिनके रहने से शरीर की स्थिति होती है, वे कौन हैं? और शरीर को धारण करने वाले में से कौन कौन है जो ये शरीर धारण रूप अपने कार्य का लोगों को ज्ञान हो जाए इसलिए प्रचार प्रसार करते हैं, स्वयं ही अपने महात्म्य का कार्य का प्रचार करने वाले कौन है? कतरे एतत् प्रकाशयन्ते से प्रश्न पूछा। और इनमें श्रेष्ठ कौन है? कह पुनः येषाम वरिष्ठ। येषाम का अर्थ है यह जो प्रजा का धारण करने वाले हैं इन्हीं में से कोई एक होगा प्रधान, वो कौन है? ये भार्गव के आचार्य पिपलाद जी के प्रति प्रश्न हुए तीन अवांतर प्रश्न, तीनों का मिलकर के एक प्रश्न माना जाता है। ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से अपरा विद्या का जो उपासना रूप अंश है उसे स्पष्ट किया जाएगा। प्राण उपासना यहां पर उदाहरण के रूप में बताई जा रही है। और उपासना में उपास्य माना जाएगा प्राण। उपासना कहा जाता है उपास्य के गुणों के चिंतन को। तो उपास्य प्राण के गुणों का चिंतन, यह प्राण की उपासना मानी जाएगी। इसके लिए प्राण में कुछ गुणों का वर्णन करना जरूरी है। तो भार्गव के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए आचार्य पिपलाद जी उपास्य प्राण के गुणों का वर्णन करेंगे, गुण बताएंगे कि उपास्य प्राण में यह यह गुण है, इनका चिंतन करने से प्राण उपासना बनेगी। और फिर जो तीसरा प्रश्न आएगा, वहां उपासना का स्वरूप तथा उपासना का विधान और फल बताया जाएगा। इसके लिए तीसरा प्रश्न है। तो दूसरा और तीसरा इन तीन दो प्रश्नों से उपासना का पूरा पूरा विधान होगा। तो ये जो द्वितीय प्रश्न रूप प्रकरण है, इसमें प्रथम जो वाक्य हुआ ये एक भार्गव का प्रश्न रूप वाक्य है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्वितीय कंडिका रूप वाक्य है। आचार्य पिपलाद जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि तस्मै सहो वाच आकाशो हवा एष देवो वायु रग्नि रापह पृथ्वी वांग मनस चक्षु श्रोत्रंच ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम् एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयाम। तो यहां इस द्वितीय कंडिका रूप वाक्य में भार्गव के दो प्रश्नों का उत्तर आचार्य दे रहे हैं कि कितने देव प्रजा का विधारण करते हैं, ये पहला प्रश्न, इसका भी उत्तर है इसमें। और दूसरा प्रश्न कतर एतत प्रकाशयन्ते, इसका भी उत्तर है। दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि स ह वाच तस्मै, यह श्रुति वाक्य है। तो श्रुति कह रही है कि तस्मै यानी प्रश्नकर्ता भार्गव को, स यानी आचार्य पिपलाद जी ने, वाच यानी कहा, आचार्य पिपलाद जी ने भार्गव के प्रश्न का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो उत्तर है पहले प्रश्न का, आकाशो हवा एष देव वायु अग्नि आपह पृथ्वी। प्रजा शब्द का अर्थ है जिसका धारण किया जा रहा है, वह शरीर है, स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर के विधारणकर्ताओं को बताना है, तो कार्य का विधारण करता है कारण, कार्य को धारित करके रखता है कारण। तंतु कारण है, वस्त्र कार्य है, तो वस्त्र तंतुओं से बना है, तंतुओं में ही स्थित होता है, इसलिए माना जाता है कि कार्य का वस्त्र रूप कार्य का विधारयिता, उसका उपादान कारण भूत जो तंतुए हैं वे हैं। यदि तंतुओं को हटा दिया जाए तो वस्त्र नहीं रह सकता। ऐसे ये स्थूल भूत स्थूल शरीर के उपादान कारण है, तंतु जैसे उपादान कारण है वस्त्र के, वस्त्र है उपादेय यानी कार्य किसका? तंतुओं का। ऐसे ये 84 लाख प्रकार के शरीर जिसे प्रजा कहा गया, ये है कार्य वस्त्र स्थानीय, और तंतु स्थानीय है ये पांचों भूत, उन्हें यहां पर आकाश वायु अग्नि आप और पृथ्वी शब्द से कहा जा रहा है। लेकिन ये पांचों भूत कौन से? जो हम चलते हैं तो रास्ते में पड़ी हुई मिट्टी रूप पृथ्वी, और कहीं पर पानी है तो वो पानी, और अग्नि और वायु, ऐसा जहां कहीं का उठा करके मिलाने से ये 84 लाख प्रकार के शरीर नहीं बनते हैं। स्थूल शरीर का ही कुछ सूक्ष्म अंश जिससे ये स्थूल शरीर बनते हैं, लेकिन वह स्थूल शरीरों का उपादान कारणभूत स्थूल भूतों का वह सूक्ष्म अंश सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो भी एक प्रकार से तत्व है। प्रत्येक जीव का अपना अपना, जैसे सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, सबका मन अलग है, सबके प्राण अलग है, सबकी ज्ञानेन्द्रिया अलग है, कर्मेन्द्रिया अलग है, वेष्टि, इन 17ों का समुदाय माना जाता है एक वेष्टि सूक्ष्म शरीर। वह जैसे प्रत्येक जीव का अलग अलग है, ऐसे प्रत्येक जीव का स्थूल शरीर भी अलग अलग है, और ये स्थूल शरीर के उपादान कारण भी हैं सबके ये स्थूल भूत ही, लेकिन उन स्थूल भूतों के अंश अलग अलग हैं। जैसे आप पंचकृत पंच महाभूतों से ही सूक्ष्म शरीर बना है, वह सूक्ष्म शरीर सबके अलग अलग हैं, ऐसे स्थूल शरीर के उपादान कारण प्रत्येक जीव के भूत सूक्ष्म अलग अलग हैं, और उन भूत सूक्ष्मों को सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म ये अलग अलग दो शब्द हैं। वर्ण तो दोनों में उतने ही हैं, भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर इतना ही है कि सूक्ष्म शब्द पहले प्रयोग में लाते हैं, भूत शब्द का बाद में प्रयोग करते हैं, तो सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म शब्द पूर्व में, भूत शब्द बाद में रखेंगे, तो सूक्ष्म शब्द सूक्ष्म भूत ये शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा अपंचकृत पंचमहाभूत, जो सूक्ष्म भूत है, पंच तन्मात्राएं जिनको कहा जाता है, शब्दादि पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत अपंचकृत पंचमहाभूत ये पर्यायवाचक शब्द है। वो स्थूल शरीर का उपादान कारण नहीं है। स्थूल शरीर का उपादान कारण को बताने वाला शब्द है, वहां भूत शब्द पहले है, सूक्ष्म शब्द बाद में है। भूत सूक्ष्म कहते हैं तो स्थूल भूतों का ही वह सूक्ष्म अंश जिससे यह 84 लाख प्रकार का शरीर निर्माण होता है, स्थूल शरीर का उपादान कारण को बताने के लिए जो शब्द प्रयोग होगा उसमें भूत पहले रहेगा, सूक्ष्म शब्द बाद में रहेगा। भूत सूक्ष्म ये स्थूल शरीर का उपादान कारण, वह भी प्रत्येक का अलग अलग है। हाँ, पंचकृत पंच महाभूतों का सूक्ष्म अंश, सभी पंचकृत पंच महाभूतों को यानी स्थूल भूतों को भूत सूक्ष्म नहीं कहा जाएगा, उनमें से जितना अंश स्थूल शरीर का उपादान कारण बनता है उतना अंश, और वह प्रत्येक जीव के साथ सृष्टि के प्रारंभ में ही जैसे सूक्ष्म शरीर ईश्वर बना करके दे देते हैं, वो हमेशा वही रहता है, फिर तत्व है ना। स्थूल शरीर तो बदलता जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है। जब इस शरीर को छोड़ करके जीव चला जाता है दूसरा शरीर धारण करने के लिए, तो सूक्ष्म शरीर को साथ में ले जाता है। इसे 15वें अध्याय में कहा है ना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात। तो ये अपने अपने गोलकों में स्थित सारी इंद्रियां, उनको निकाल करके गोलकों में से इस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जब जाती हैं तो साथ में ले जाती है, दूसरे शरीर में जीव के साथ ही जाती है। ऐसे भूत सूक्ष्म भी, जैसे सूक्ष्म शरीर के सारे तत्व साथ में जाते हैं, ऐसे भूत सूक्ष्म भी साथ में ही चला जाता है। वो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, ऐसे ब्रह्म सूत्र में निर्धारण हुआ है। ये कहा गया कि स्थूल भूत तो सभी जगह उपलब्ध है, तो जहां उसे जाना है वहीं के पृथ्वी पानी और अग्नि वायु आकाश को लेकर के शरीर बन जाएगा। तो साधारण सा घड़ा भी बनाना होगा तो जिस किसी मिट्टी से नहीं बनता, कुम्हार को देखना पड़ता है कि किस प्रकार की मिट्टी है, उस मिट्टी को ही ला करके वो घड़ा बनाता है, भले ही दूर में हो, नहीं तो उसके आंगन के सामने रास्ते में पड़ी हुई मिट्टी उससे थोड़ी घड़ा बना पाएगा, नहीं बना पाता। तो ऐसे ये सारे स्थूल शरीर भूत स्थूल भूत सर्वत्र उपलब्ध होने पर भी सभी भूत सूक्ष्मों के अंश से नहीं बनते, कुछ विशेष अंश होते हैं, वह भी सूक्ष्म शरीर के तरह भूत सूक्ष्म साथ में चले जाते हैं जीवात्मा के, फिर वहां वह शरीर का रूप धारण करते हैं। उनको यहां पर आकाश वायु अग्नि आप और पृथ्वी शब्द से लेना, ये आकाश आदि पांच महाभूतों का वाचक, जो आकाश आदि पांच पदों का प्रयोग है, वह पांचों पद यानी शब्द मिलकर के बता रहे हैं भूत सूक्ष्म को, जो स्थूल शरीर का उपादान कारण होता है। वही स्थूल शरीर को बना करके स्थूल शरीर को धारण करके रखते हैं, जैसे तंतु वस्त्र को उत्पन्न करके जब तक वस्त्र है तब तक अपने में धारित करके रखते हैं, ऐसे भूत सूक्ष्म स्थूल शरीर को बना करके स्थूल शरीर को धारण करते हैं। ये दिखाने के लिए बन जाते हैं स्वयं ही शरीर के रूप में बन जाते हैं, हाँ तो मरण के बाद चले जाते हैं। ये जो स्थूल शरीर है ना, इसमें दो अंश हैं, कुछ अंश हैं, जैसे भवन के दो अंश होते हैं, एक उसका स्ट्रक्चर और एक होता है फिर सीमेंट बजड़ी आदि से प्लास्टर आदि करके बना हुआ ऊपर का रूप। ऐसे शरीर में भी दो अंश हैं, एक स्ट्रक्चर है वो भूत सूक्ष्म है, तो स्ट्रक्चर मात्र निकाल लिया और बाकी सब रखा, ऐसा हो सकता है ना? होता है, वो सार है शरीर का, भूत सूक्ष्म जो है सार है, तो वो सार सार निकल आता है। जैसे बादाम का तेल निकालते हैं, इलायची का तेल निकालते हैं ना, तो छिलके में से दाने निकाल करके पीस करके उसका तेल निकालते हैं, या छिलके के अंदर दाने वैसे ही होते हैं इलायची के, दाने ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब इलायची आपके सामने खाने के लिए मुखवास के रूप में आती है भोजन के बाद, तो जिन दानों से तेल निकला हुआ है छिलकों में से उन दानों को निकाल करके देखो, और जो तेल निकाले बिना रखी हुई इलायची है वो छिलके में से दाने निकाल करके देखो, तो आंख से ही दोनों का आकार प्रकार बिल्कुल अलग अलग दिखता है कि नहीं दिखता। वो उसमें तेल आंख से भी दिखता है जिसमें से तेल नहीं निकाला, और जिसमें से तेल निकाला बिल्कुल सफेद से दिखता है, और उनको खाओ तब भी चौथा चौथा जैसा कोई स्वाद नहीं होता। और जिनका तेल नहीं निकाला है इलायची के दानों का वो मुख में डालते हैं तो वो जो है खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, उसका आकार भी आंख से भी अलग प्रकार से दिखते हैं वे दाने, काले काले अच्छी तरह से, और उसमें तेल दिखता भी है, तेज दिखता है उनके अंदर, और वो निस्तेज दिखते हैं सफेद से। ये दोनों का अंतर है ना, लेकिन ऊपर से इलायची का छिलका भी वैसा ही रहता है, अंदर दाने भी वैसे ही रहते हैं, सब कुछ वैसे ही रहता, और उसका सार निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता। ऐसे कपित्थ नाम का फल होता है जिसे कैथ कहते हैं, गणेश जी को बहुत प्रिय है ना, कपित्थ चारु फल चारु भक्षणम, गणेश जी का एक विशेषण आता है। जिस जंगल में हाथी बहुत रहते हैं उस जंगल में ये कैथ के पेड़ बहुत होते हैं, जहां कैथ के पेड़ होते हैं वहीं हाथी रहते हैं, क्योंकि उनका आहार है वो, और वो कैथ वो खाते हैं तो चबा करके नहीं खाते, सीधे वो निगल लेते हैं, जैसे टैबलेट निगल लेते हैं कि चबा करके खा लेते हैं, चबा करके खा नहीं सके कड़वी लगेगी, वो पानी के साथ निगल लेते हैं ना हम लोग, ऐसे वो जो है कपित्थ के फल निगल लेते हैं हाथी, और निगलने के बाद उसमें जो गरी होती है अंदर, जैसे नारियल के अंदर गरी होती है ना, ऊपर छिलका होता है, तो ऐसे वो अंदर की गरी तो हाथी के पेट के अंदर प्राकृतिक ऐसी कुछ शक्ति है कि उसको क्रैक किए बिना उस छिल के ऊपर के कवच को वो क्रैक भी नहीं होता, थोड़ा भी उसमें क्रैक भी नहीं आता, न तो कोई छेद होता है, और अंदर की गरी गरी वो खा लेता है, पच जाती उसके अंदर, और कवच वैसा ही रहता है, कम से कम थोड़ा बहुत कहीं क्रैक होता तो उसमें से निकल गई माना जाता वो पिघल करके, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। और जब वो शौच करेगा तो शौच के माध्यम से वो ऊपर का जो छिलके का कवच होता है ना वो निकल आता है, और पेड़ से तोड़ा हुआ वो कैथ का फल और हाथी के शौच से निकल करके समझ लो अलग हो गया, वो जो फल है दोनों को ऊपर से देखोगे आप तो एक जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि दोनों में वो छिलका ऊपर का वैसा ही है, कोई छेद नहीं, क्रैक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हाथ में उठा करके देखोगे तो ये बिल्कुल हल्का लगेगा, और वो गरी जिसके अंदर है वो भारी लगेगा, तोड़ करके देखोगे तो और भी दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, उसमें बिल्कुल गरी मिलेगी नहीं, जिसके अंदर गरी गरी मिलेगी, तो वो गरी गरी जैसे हाथी ने निकाल ली और ऊपर का कवच जैसा का तैसा छोड़ दिया ना, ऐसे ही ये आप भी अभी तक जितने शरीर छोड़ते हुए आए हैं ना, उन सब शरीरों में से गरी गरी को निकाल लिया, सार को, जैसे इलायची के उस तेल को निकाल लिया तेल निकालने वाले ने, बाकी सुखा करके बाजार में भेज दी, दिखती तो दोनों एक जैसी हैं ऊपर से, ऐसे भी दिखती भी नहीं, एक तो हरी हरी लगती है अच्छी, तेजयुक्त भी दिख रहा है छिलका भी, और जिसकी वो निकाला है वो वाइट होता है, ऐसे जीवित शरीर में और मृत शरीर में आंख से देखने पर भी कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता, कुछ अंतर नहीं दिखता, इसका अर्थ देखा है नहीं मुर्दा, आपने मुर्दा नहीं देखा अभी तक, ये वैसे नहीं रहता है, निस्तेज हो जाता है। मुर्दे को देखो, सोते हुए आदमी को देखो और मुर्दे को देखो, उसमें भी एक सोते हुए में चेतना रहती है, तेज रहता है वो, बिल्कुल जो है तेजस्वी लगेगा और चेतनाहीन दिखेगा, बिल्कुल तेजहीन दिखेगा मुर्दा।